श्रद्धा भक्ति श्री रामचंद्र शुक्ल। किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक अस्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यदि हमें निश्चय हो जाएगी कि कोई मनुष्य बड़ा वीर बड़ा सज्जन बड़ा गुणी बड़ा दानी बड़ा विद्वान बड़ा परोपकारी या बड़ा धर्मात्मा है तो वह हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा। हम उसका नाम आने पर प्रशंसा करने लगेंगे उसे सामने देख आदर से सिर नवाएंगे। किसी प्रकार का स्वार्थ न रहने पर भी हम सदा उसका भला चाहेंगे उसकी बढ़ती से प्रसन्न होंगे और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा न सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उसका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम प्रिय के स्थानीय कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है। पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे। पर श्रद्धा के लिए आवश्यक यह है कि कोई मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एक अंग। प्रेम में घनत्व अधिक और श्रद्धा में विस्तार। किसी से प्रेम रखने वाले दो ही एक मिलेंगे पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों हजारों लाखों या करोड़ों मिल सकते हैं। सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आशय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता रहता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिससे मनुष्य समाज की स्थिति है। कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता ही की ओर आंख उठती है। कर्म से कर्ता की स्थिति को जो मनोहरता प्राप्त हो जाती है उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का एक शक्ति केंद्र हो जाता है। जिस समाज में किसी ऐसे ज्योतिषमान शक्ति केंद्र का उदय होता है उस समाज में भिन्न भिन्न हृदयों से सुभावनाएं मेघखंडों के समान उठकर और एक ओर और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती है कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है। प्रसिद्धे रूप में संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है। प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं। प्रसिद्धे का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। प्रेम प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन। प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। प्रेमी और प्रिय के बीच कोई वस्तु अनिवार्य नहीं पर श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु होनी चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से यह पहचानना कठिन न रह जाए कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंदातरगत भाव प्रेम है या श्रद्धा। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया चित्र बहुत सुंदर जचा और हमारे चित्र में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृद भाव उत्पन्न हुआ तो वह भाव श्रद्धा है क्योंकि वह काव्य या चित्र रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि वे बराबर साथ चले, उसका साथ कभी न छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है। वह उसका उठना बैठना चलना फिरना सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते बैठते चलते फिरते पर सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा नहीं अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है। वह दो से एक करना चाहता है। सारांश यह कि श्रद्धा की दृष्टि में पहले कर्मों पर होती हुई श्रद्धे तक पहुंचती है और प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों आदि पर जाती है। एक में व्यक्ति की कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों के को व्यक्ति द्वारा। एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति। किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे वह प्रेम में परिणत हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। रूप भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है। अतः किसी के रूप और हमारे बीच यदि कोई तीसरा व्यक्ति आया तो उस व्यापार में सामाजिकता आ गई क्योंकि हमें उस समय यह ध्यान हुआ कि उस रूप में एक तीसरे व्यक्ति को आनंद या सुख मिला और हमें भी मिल सकता है। जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रिझने वाला या कदरदान ही कहलाएंगे पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे उसे बराबर अपने सामने ही रखना चाहेंगे तब प्रेम का सूत्र पात्र समझा जाएगा। श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार का अधिकार नहीं चाहता पर प्रेमी प्रिय हृदय पर अपना अधिकार चाहता है। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धे से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम विशिष्ट रूप से उसके अंतर्गत भी ना हो, जानबूझकर उसने कोई सुप्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकर में होती है, प्रतिकार में होती है, जिसका सुप्रभाव हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा कि उसका भार सारे मनुष्यों को बांध दिया है, दो चार माननीय लोगों के ही सिर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषताएं किसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं और लोग भी श्रद्धा रखें, और जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक दूसरे प्रकार का अन्य अधिकार या ठेका चाहते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहते पर प्रेमी नहीं। जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता और हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वे कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते देख कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर में सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञ होती है वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई है, तो यह हमारा पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने को ऐसे उच्च भाव का धारण करता प्रकट करते हैं, पर उसी सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, और इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष में सामान्य की ओर हो जाए, तब यदि हमारे चित्त में उसके प्रति पहले से कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो, तो हम श्रद्धालु की उच्च पदवी के अधिकारी हो सकते हैं। सामान्य रूप में हम किसी के गुण या शक्ति का विचार सारे संसार से संबद्ध करके देखते हैं, अपने से या किसी विशेष प्राणी से संबद्ध करके नहीं। हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई गुण या शक्ति है जिसका प्रयोग वह चाहे जहां और जिसके प्रति कर सकता है। श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकार। अतः जिसकी स्वार्थबद्ध दृष्टि अपनों से आगे नहीं जा सकती, अथवा अभिमान के कारण जिन्हें अपनी ही बड़ाई के अनुभव की लत लग गई है, उनकी इतनी सवाई नहीं कि वे श्रद्धा ऐसे पवित्र भाव को धारण कर सके। स्वार्थियों अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा नहीं टिक सकती। उनका अंतःकरण इतना संकुचित और मलिन होता है कि वे दूसरों की का यथार्थ मूल्य नहीं परख सकते। स्थूल रूप से श्रद्धा 3 प्रकार की कही जा सकती है, प्रतिभा संबंधनी, दूसरा सील संबंधनी और तीसरा साधन संपत्ति संबंधनी। प्रतिभा से मेरा अभिप्राय अंतःकरण की उस उद्भाविका क्रिया से है जिसके द्वारा कला विज्ञान आदि नाना क्षेत्रों में नई नई बातें या कृतियां उपस्थित की जाती है। यह ग्रहण और धारणा शक्ति से भिन्न है जिनके द्वारा इधर उधर से प्राप्त ज्ञान विद्वता संचित किया जाता है। कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में भी थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए, इसमें उसका अभाव कोई भारी त्रुटि नहीं, वह क्षम्य है। यदि किसी उत्तम कवि या चित्र की विशेषता न समझने के कारण हम कवि या चित्रकार पर श्रद्धा न कर सके, तो यह हमारा अनाड़ीपण है, हमारे रुचि संस्कार की त्रुटि है। इसका उपाय यही है कि समाज कला संबंधी मर्मज्ञता के प्रचार की व्यवस्था करे जिससे विविध कलाओं के सामान्य आदर्श की स्थापना जनसमूह में हो जाए। पर इतना होने पर भी कला संबंधी रुचि की विभिन्नता थोड़ी बहुत अवश्य रहेगी। श्रद्धालु रुचि का नाम लेकर ईर्ष्या या अहंकार के दोषारोपण से बच जाया करेंगे। पर सील संबंधी श्रद्धा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सील या धर्म के सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सभ्यजन समुदाय में प्रतिष्ठित है। धर्म ही से मनुष्य समाज की स्थिति है, अतः उसके संबंध में किसी प्रकार का रुचि भेद मतभेद आदि नहीं। सदाचारी के प्रति यदि हम श्रद्धा नहीं रखते तो समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। यदि किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देख हमारे मुंह से धन्य धन्य ना निकला, तो हम समाज के किसी काम के ना ठहरे। समाज को हमसे कोई आशा नहीं, हम समाज में रहने योग्य नहीं। किसी कर्म में प्रवृत्त होने से पहले स्वीकार करना आवश्यक होता है कि वह कर्म या तो हमारे लिए या समाज के लिए अच्छा है। इस प्रकार की स्वीकृति कर्म की पहली तैयारी है। श्रद्धा द्वारा हम आनंदपूर्वक स्वीकार करते हैं कि कर्म के अमुक अमुक दृष्टान धर्म के हैं, अतः श्रद्धा धर्म की पहली सीढ़ी है। धर्म के इस प्रथम सोपान पर प्रत्येक मनुष्य को रहना चाहिए जिसमें जब कभी अवसर आए तब वह कर्मरूपी दूसरे सोपान पर हो जाए। अब रह गई साधन संपत्ति संबंधी श्रद्धा की बात। यहाँ पर साधन संपत्ता का ठीक भाव समझ लेना आवश्यक है। साधन संपत्ति का अनुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है। किसी को पद्य रचने की अच्छी अभ्यास संपन्नता है, यदि शिक्षा द्वारा उसके भाव उन्नत है, वह स्वहृदय है, तो वह अपनी संपन्नता का मनोहर उच्चा भावपूर्ण काव्य प्रस्तुत करने में कर सकता है। यदि उसकी अवस्था ऐसी नहीं है तो वह या तो साधारण भावशून्य गद्य को गीतिका शिखरणी आदि नाना छंदों में परिणत करेगा या अपनी भद्दी और कुरुचिपूर्ण भावनाओं को छंदोबद्ध करेगा। उसके स्कृति पर श्रद्धा रखने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। ऐसी व्यक्ति के प्रति जो श्रद्धा होती है वह साधन संपन्नता पर होती है, साध्य की पूर्णता पर नहीं। देसी कारीगरी, चित्रकारी, संगीत आदि में नियम पालन के अभ्यास के द्वारा प्राप्त इन साधन संपन्नता ही पर इधर बहुत दिनों से अधिक ध्यान दिए जाने लगा था और मानव हृदय पर इन मनोहारनी कलाओं के प्रभाव का बहुत कम विचार होने लगा था। बहुत से पुराने मकानों की कारीगरी देखिए तो उसमें बहुत सा काम गिचपिच किया हुआ दिखाई देगा। ऐसे महीन मेलमेटों की भिन्न भिन्न पतरियां दीवारों में जमाई हुई मिलेंगी जो बिना आंख को पास ले जाकर सताए स्पष्ट न जान पड़ेगी। सारे मकान को एक बार में देखने से इन सबों का सम्मिलित प्रभाव दृष्टि और मन पर क्या पड़ेगा, इसका कुछ भी विचार बनाने वालों ने नहीं किया, यह स्पष्ट दिखाई देगा। ऐसे कामों में अभ्यास का अर्थ समय और श्रम के व्यय या अपव्यय का पूरा परिचय मिलता है, पर विचार सौहृदयता पूर्वक इनके उपयोग का बहुत कम है। समझने की बात है कि इमारत हाथ पर लेकर देखने की चीज नहीं, 10-5 हाथ दूर पर खड़े होकर देखने की चीज है। चित्रकारी की दिशा भी इसी प्रकार की हो गई थी। राधा कृष्ण कदम्ब के नीचे खड़े थे। कदम्ब की एक एक पत्ती अलग अलग बारीकी के साथ बनी दिखाई पड़ती है। राधा की चुनरी की एक एक बूटी बड़ी सावधानी और मेहनत के साथ बनाई गई है। देखने वालों को यह नहीं जान पड़ता कि वह कुछ दूर खड़ा होकर कदम्ब और राधा कृष्ण को एक साथ देख रहा है, बल्कि यह जान पड़ता है कि कभी तो पत्तियां गिनने के लिए वह पेड़ पर चढ़ता और कभी नमूना लेने के लिए चुनरी हाथ में लेता है। ऐसी रचनाओं के प्रति यदि श्रद्धा प्रकट की जाएगी तो वह अभ्यास, श्रम और बारीकी अर्थात साधन संपन्नता के विचार से होगी, साध्य की पूर्णता अर्थात कला के विचार से नहीं, जिसका उद्देश्य मानव हृदय पर मधुर प्रभाव डालना है। संगीत के पेच पांव देखकर भी हथियोग याद आता है। जिस समय कोई कलावंत पक्का गाना गाने के लिए आठ अंगुल मुंह फैलाता है और आ करके विकल होता है, उस समय बड़े बड़े आलसियों का आसन दिख जाता है। जो संगीत नार की मधुर गति द्वारा मन में माधुरी का संचार करने के लिए था, वह इन पक्के लोगों के हाथ में पड़कर केवल स्वर्गराम की लंबी चौड़ी कबायद हो गया। श्रद्धालुओं के अंतःकरण की मार्मिकता इतनी स्तब्ध हो गई, एक वर स्वान के गले से भी इतनी लंबी कबायद को ठीक उतरते देख उनके मुंह से वाह वाह ओहो हो निकलने लगा। काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि इसका सारा रूप ही छिप गया। बात यह हुई कि इन विविध कलाओं के जितने अभ्यास गम्य और श्रमसाध्य अंग थे वे तो हद से बाहर घसीटे गए और जितने सौहृदयता से संबंध रखने वाले थे उन पर ध्यान ही न रहा। यदि ये कलाएं मूर्तिमान रूप धारण करके सामने आती तो दिखाई पड़ता कि किसी को जलोदार हुआ है, किसी को फील पाओ। इनकी दशा सोने और रत्नों से जुड़ी गुठली धार की तलवार किसी हो गई है। किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देखकर उस पर जनसाधारण की श्रद्धा होती और होनी चाहिए। प्रोफेसर राममूर्ति को मोटर रोकते, लोहे की मोटे मोटे सीकर तोड़ते, छाती पर 40 मन का पत्थर रखते, हाथी खड़ा करते और गाड़ी दौड़ाते देख उनके शारीरिक बल के कारण उन पर श्रद्धा होती है। अब इसी संपन्नता का वे सदुपयोग भी कर सकते और दुरुपयोग भी कर सकते और अनुपयोग भी कर सकते। वे इसके द्वारा किसी कुम्हारी संकट से अपनी या दूसरे की सुरक्षा भी कर सकते और किसी निरपराध को पीड़ित भी कर सकते। पर हमारी श्रद्धा बिना सदुपयोग या दुरुपयोग की संभावना की कल्पना किए बिना शुद्ध साधन संपन्नता ही के संबंध में होती है और उसके उपयोग की निपुणता या प्रतिभा पर निर्भर नहीं होती। विद्वता किसी विषय की बहुत सी बातों की जानकारी का नाम है, जिसका संचय बहुत कष्ट, श्रम और धारणा से होता है। यह बात विद्वान की प्रतिभा पर निर्भर है कि वह ज्ञान का भंडारी और उपयोगकर्ता दोनों हो, अर्थात वह उत्तम चिंतक, वक्ता, लेखक, अन्वेषक या कवि भी होकर उस वंचित साधन का उपयोग करे और अपने मूल विचारों का प्रभाव पूर्ण प्रकाश करे। यदि विद्वान में यह प्रतिभा नहीं है तो यह शक्ति नहीं है और वह अपनी संचित जानकारी को कलाकुशल प्रतिभाशाली लेखकों या तत्वान्वेषकों के सामने रख दे कि उससे आवश्यकता अनुसार काम ले। इसी रीति से उसकी विद्वता सामाजिक उपयोग में आ जाएगी। भिन्न भिन्न मानसिक संस्कार के लोगों में किसी विषय से संबंध रखने वाली श्रद्धा भिन्न भिन्न मात्रा में ही की हुआ करती है। यदि किसी को शारीरिक बल, साहस और चतुराई पर अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो वह इनका दुरुपयोग देखकर भी बनी रह सकती है। अत्याचारियों के बल, डाकुओं के साहस और लंपटों की चालाकी की तारीफ संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। एक बात और है, यदि किसी पर किसी एक विषय में अत्यंत अधिक श्रद्धा है तो उसकी अन्य विषयों की त्रुटियों पर ध्यान नहीं जाता और कभी ध्यान भी जाता है तो वे भी सुहावनी लगती है। कोई प्रतिभाशाली कवि विलासप्रिय मध्य या सनकी है तो जो अत्यंत काव्य प्रेमी होगी उनकी घृणा को उसके ये दुर्गुण पूर्ण रूप से आकर्षित न कर सकेंगे। यहाँ तक कि उनके दुर्गुणों की चर्चा भी वे बड़ी रुचि के साथ करेंगे और सुनेंगे। बात यह है कि मनुष्य का अंतःकरण एक है, उसकी एक साथ ही परस्पर विरुद्ध स्थितियां नहीं हो सकती। कि इस प्रकार की मानसिक संबंधता को सिद्धांत दृढ़ता कह सकते हैं। यद्यपि सिद्धांत समाज में उतना अनर्थकारी नहीं हो सकता जितना अपराधी नहीं ठहराया सकता, जितना बनांत क्रोधांत या ईर्ष्यांत, पर उसकी श्रद्धा के बढ़ते बढ़ते क्रियमान रूप धारण करने पर और सील संबंधी चेतना को बिल्कुल जवाब मिल जाने पर समाज के अरिष्ट में उसके ब्याज से सहायता पहुंच सकती है। यदि किसी अपव्ययी और मद्यप कवि पर अत्यंत श्रद्धालु होकर कोई उसकी आर्थिक सहायता करता जाता है तो वह उस अन्याय और उपद्रव का थोड़ा बहुत उत्तरदाता अवश्य होता है जो कवि को अपने सहवर्तियों के बीच करने में समर्थ होते हैं। यदि किसी पहलवान के बल पर प्रसन्न होकर कोई उसे हलवा पूरी खाने के लिए कुछ महीना बांटता है तो उसके गुंडेपन के कारण लोगों को पहुंची हुई पीड़ा के दोष का वह कम से कम उतना अवश्य भाग पाता है जितना इंद्रकृत हत्या की बताई के समय बहुतों को मिला था। उद्देश्य के अभाव के बल से यद्यपि दोनों श्रद्धालुओं पर दोष उतना सटीक नहीं लग सकता, पर समाज की दृष्टि से वे दान के पात्रता संबंधी अविवेक का अभियोग से नहीं बच सकते। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि सील, कला और साधन संपत्ति, श्रद्धा की इन तीन विषयों में से किसका ध्यान मनुष्य को पहले होना चाहिए और किसका पीछे। इसका बेधड़क यही उत्तर दिया जा सकता है कि जनसाधारण के लिए सील का ही सबसे पहले ध्यान होना आवश्यक है, क्योंकि उसका संबंध मनुष्य मात्र की सामान्य स्थिति रक्षा से है। इसके अभाव में समाज या उस आधार की स्थिति ही नहीं रह सकती जिसमें कलाओं की उपयोगिता या मनोहारिता का प्रसार और साधन संपत्ति की प्रचुरता का वितरण और व्यवहार होता है। दूसरों की श्रद्धा संसार में अत्यंत वांछनीय वस्तु है, क्योंकि वह एक प्रकार का ऐसा परकीय निश्चय या विश्वास है जिसके सहारे स्वकीय कार्य सुगम होता है, जीवन की कठिनता कम होती है। जिस पर लोगों की अश्रद्धा होती है उसके लिए व्यवहार के सब सीधे और सुगम मार्ग बंद हो जाते हैं। उसे या तो कांटों पर या राई कोस 9 दिन में चलना पड़ता है, पर जो किसी प्रकार दूसरों की श्रद्धा संपापित कर लेता है उसके पैर रखने के लिए फूलों की पंखड़ियां आज कल लाल बनाई जाती है, बिछाई जाती है। समाज में ये वस्तुएं सच्चे गुणियों और परोपकारियों के लिए है, पर उन्हें छीनने और चुराने की ताक में बहुत से चोर चाई और लुटेरे रहते हैं जो इनके द्वारा स्वार्थ साधन करना या अपनी तुच्छ मानसिक वृत्तियों को तृप्त करना चाहते हैं। इनसे समाज को हर घड़ी सावधान रहना चाहिए। इन्हें सामाजिक दंड देने के लिए उन्हें सदा संदिग्ध रहना चाहिए। ये अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं। कोई गेरुआ वस्त्र लपेटे धर्म का दिंगा पीटता दिखाई देता है, कोई देश हितैषिता का लंबा चोगा पहने देशोद्धार की पुकार करता जाता है। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मन से, वचन से और कर्म से। इनमें से मन तो देखने दिखाने की चीज नहीं, वाणी और कार्य प्रणाली की नकल की जाती है और बड़ी सफाई से की जाती है। हितोपदेश के गधे ने तो बाघ की खाल ही ओढ़ी थी, पर ये लोग बाघ की बोली भी बोल लेते हैं। कहीं कहीं केवल वचन से ही काम निकल आता है। एक दिन मैं काशी की एक गली से जा रहा था। एक ठठेरे की दुकान पर कुछ परदेशी यात्री किसी बर्तन का मोल भाव कर रहे थे और कह रहे थे कितना नहीं इतना लो तो ले। इतने ही में सौभाग्यवश दुकानदार जी को ब्रह्मगानियों के वाक्य आ गए। उन्होंने चत कहा, माया छोड़ो और इसे ले लो। सोचिए तो काशी ऐसा पुण्य क्षेत्र, यहाँ तो माया छोड़ी जाएगी और तो कहाँ छोड़ी जाएगी। थोड़ी दिन हुए, किसी लेखक ने कहीं पढ़ा कि प्रतिभाशाली लोग उग्रता और पागलपन लिए होते हैं, तब से बराबर अपने में इन दोनों शुभ लक्षणों की स्थापना के यत्न में लगे रहते हैं। सुनते हैं कि पहले से कुछ कृतकार्य भी हुए हैं, पर पागलपन की नकल करना कुछ हंसी खेल नहीं। भूल चुक से कुछ समझदारी की बातें मुंह से निकल ही जाती है। जैसे और सब विद्याओं की वैसे ही पर श्रद्धाकर्षण की विद्या की भी आजकल खूब उन्नति हुई है। आश्चर्य नहीं कि इसके लिए कुछ दिनों में एक अलग विद्यालय खुले। श्रद्धा के यथार्थ के कारण का जितना ही अभाव हो आकर्षक को अपनी विद्या में उतना ही दक्ष समझना चाहिए। आजकल सार्वजनिक उद्योग की बड़ी धूम रहा करती है और बहुत से लोग निराहार परोपकार व्रत करते सुने जाते हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि प्रसन्नता के सहारे कार्य में सुगमता आती है, अतः किसी कार्य साधना के लिए जो प्रयत्न द्वारा दूसरों के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करते हैं वे इस कार्य के अनुसार चतुर, दीति, कुशल, ढूंढ या पाखंडी कहे जाते हैं। पर संसार में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपने ऊपर पराई श्रद्धा के चिंतन से जो एक प्रकार का आनंद मिलता है उसकी लत पड़ जाती है। वे पर श्रद्धा को मनोरंजन या मानसिक भोग विलास की एक सामग्री समझते हैं। वे पराई श्रद्धा केवल इसी निमित्त चाहते हैं और किसी उद्देश्य से नहीं। ऐसे पर श्रद्धा विलासियों को मानसिक दुर्व्यसन रहता है और वे इसी प्रकार दुर्व्यसनी कहे जा सकते हैं जिस प्रकार शराबी, गंजेरी और चंदूबाज आदि। पर समाज की श्रद्धा ऐसे अपव्यय के लिए नहीं है, प्रयोजन के लिए है। ऐसे लोग अपनी धुन में कभी कभी बड़े बड़े सार्वजनिक कार्य भी छोड़ बैठते हैं जिनका होना इतना अभिष्ट नहीं होता जितना अपने द्वारा होना। ये लोग पहचाने इस प्रकार जाते हैं कि ये उन कार्यों से अपने नाम का वियोग घड़ी भर भी नहीं सह पाते। यहाँ तक कि यदि वे दूसरों को कोई ऐसा कार्य हाथ में ले देखते हैं तो इसमें समाज के साधुवाद की संभावना होती है, उनका पेट फूलने लगता है और ये या तो गुप्त रूप से उनमें विघ्न की व्यवस्था करते हैं या कम से कम उसके महत्व को बहुत कम करके दिखाया करते हैं। दूसरी पहचान यह है कि ये लोग ऐसे ही काम ठानते हैं जिनका नाम और आडंबर बड़ा होता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धावान अपनी श्रद्धा द्वारा श्रद्धे में कोई ऐसा परिवर्तन उपस्थित नहीं किया चाहता जिनका अपने लिए कोई अनुकूल फल हो। श्रद्धावान श्रद्धे को प्रसन्न करने की इच्छा कर सकता है, पर उस प्रसन्नता से आप कोई लाभ उठाने की नहीं। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पल्ले पर तुली हुई एक वस्तु है, जो दूसरे पल्ले पर रखे हुए श्रद्धे के गुण कर्म आदि के हिसाब से होती है। श्रद्धा सत्कर्म या सद्गुण का ही मूल्य है, जिससे और किसी प्रकार का सौदा नहीं हो सकता। पर जबकि इस व्यापार युग में ज्ञान बिकता है, न्याय बिकता है, तब श्रद्धा ऐसे भाव क्यों नहीं बिके? पर भाव तो इस लेन देन के व्यवहार के लिए उपस्थित नहीं किए जा सकते। खैर नकली सही, एक भाव पर दूसरे भाव की कली करके हम बाजार में क्यों ना जाएं? अपनी भीरुता या चापलूसी को हम श्रद्धा भाव कहकर गलियों और संवाद पत्रों में क्यों ना पुकारे? ऐसे झूठे श्रद्धावानों से घिर कर झूठे श्रद्धा पात्रों को क्यों ना मात करें? जबकि आजकल झूठे मोती सच्चे मोतियों को मात करते हैं। कला कुशल या सदाचारी अपने चारों ओर प्रसन्नता देखना चाहता है, अतः अपनी श्रद्धा द्वारा हम उसे अपनी प्रसन्नता का निश्चय मात्र कराते हैं। हमारी प्रसन्नता से उसे अपनी सामर्थ्य का बोध हो जाता है और उसका उत्साह बढ़ता है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा द्वारा हम भी समाज का मंगल साधन करते हैं। दूसरे की श्रद्धा का श्रद्धे पर इतना ही प्रभाव पड़ना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यदि हमारी श्रद्धा के कारण वह हमें किसी प्रकार का लाभ पहुँचाना चाहता है, तो हमारी श्रद्धा को खुशामद समझता है और हमारा अपमान करता है। श्रद्धा में याचकता का भाव लेस मात्र भी नहीं है। श्रद्धा द्वारा हम अपने हृदय का परिचय देते हैं, उसमें मार्मिकता या धर्म भाव है, सात्विक आचरण या प्रतिभा की कला से प्रसन्न होने की क्षमता है। यदि हमें किसी पर श्रद्धा है, तो हमें उसके पास जाकर यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराज मेरी यह श्रद्धा स्वीकार हो। इस प्रकार की स्वीकृति की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी श्रद्धा के लिए अपने घर बैठे रह सकते हैं या उसे इस रीति से प्रकट कर सकते हैं जिस पर श्रद्धे का कोई वश नहीं। यदि हम किसी सुलेखक पर श्रद्धा है और वह हमसे रुष्ट है, तो भी हम उसका सच्चा चित्र और चरित्र छाप सकते हैं। इसका स्वत्व हमें समाज द्वारा प्राप्त है, इसका हक हमें कानूनन हासिल है। पर यदि हम उस सुलेखक से प्रेम करने चले, उसके साथ साथ लगे फिरे और हरदम उसे घेरे रहे, तो वह हमें हटा सकता है। श्रद्धा प्रदर्शित करने का जितना विस्तृत सामाजिक अधिकार हमें प्राप्त है, उतना उसकी विपरीत भाव अश्रद्धा या घृणा प्रकट करने का नहीं। क्योंकि श्रद्धा यदि हमने भूल से या स्वार्थवश प्रकट की भी तो किसी की उतनी हानि नहीं, पर यदि घृणा भूल से या द्वेषवश प्रकट की तो व्यर्थ का संताप और दुख फैल सकता है। ऊपर कहा जा चुका है कि श्रद्धा के विषय तीन है, शील प्रतिभा और साधन संपत्ति। शील या धर्म से समाज की स्थिति, प्रतिभा से रंजन और साधन संपत्ति से शील साधन और प्रतिभा विकास दोनों की संभावना है। श्रद्धे समाज की स्थिति या सुख का विधान करता है और समाज उसकी स्थिति और सुख का विधान करता है। समाज अपने श्रद्धालु प्रतिनिधियों को कभी तो उस आपत्ति से बचाने के लिए भेजता है, कभी कुछ भेंट उसके सामने रखने के लिए। श्रद्धावश जो दान दिया जाता है, वह इसी प्रकार की भेंट है। श्रद्धा दान दो प्रकार का, सच्चा दान दो प्रकार का होता है, वह एक जो श्रद्धावश दिया जाता है, दूसरा वह जो दयावश दिया जाता है। पंडितों, विद्वानों और धार्मिकों को जो दान दिया जाता है, वह श्रद्धावश दिया जाता है। अंधों, लूलों और लंगड़ों को जो दान दिया जाता है, वह दयावश दिया जाता है। श्रद्धा सामर्थ्य के प्रति होती है और दया असामर्थ्य के प्रति। जनसाधारण अपनी दया द्वारा केवल असामर्थ्य उपस्थित परिणामों का कुछ स्थान के बीच और कुछ काल तक के लिए निवारण कर सकते हैं। अतः श्रद्धा द्वारा वे ऐसे असाधारण जनों को अपने चित्तानुसार थोड़ी थोड़ी शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जो असमर्थ के कारणों के निराकरण में समर्थ होते हैं। श्रद्धावश दान में उपयोगिता का तत्व छिपा हुआ है। स्मृतियों में श्रद्धावश दान पर बड़ा जोर दिया गया है और ऐसे दान के विषय में पात्रदाता का विचार भी खूब किया गया है। विद्यादान में रत विद्वानों को, परोपकार में रत कर्मवीरों को, मानव ज्ञान की वृद्धि में तत्पर तत्वान्वेषकों को जो अभाव हो, उसे हम समाज की भूख समझनी चाहिए। इन्हें जो कुछ हम श्रद्धावश देते हैं, वह ठीक समाज के दुष्ट पेट में जाता है, जहाँ से रस रूप में उसका संचार अंग अंग में होता है। इसके विरुद्ध स्वार्थियों, अन्यायियों आदि को जो कुछ दिया जाता है, वह समाज के अंग में उसी प्रकार नहीं लगता जिस प्रकार अतिसार या संग्रहणी वाले को खिलाया हुआ अन्न। भारतवर्ष में श्रद्धा का संबंध दान के साथ इतना गहरा समझा जाता है कि अश्रद्धापूर्वक दिया हुआ दान निष्फल माना जाता है। इसी से शुष्क प्रथानुसार के रूप में भी यदि कुछ दिया जाता है, तो श्रद्धा का नाम ले लिया जाता है। पंडों, पुरोहितों को देते हुए यजमान भी कहता है कि महाराज इतनी ही श्रद्धा है, और पंडित पुरोहित भी कहते हैं कि जितनी श्रद्धा हो उतना दो। यद्यपि इन पंडे और पुरोहितों के संबंध में सदा यह निश्चय नहीं रहता है कि वे बड़े धार्मिक और बड़े परोपकारी हैं। मनोविकार की उपयुक्त विषयों के निश्चय में कभी कभी बुद्धि की भी थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के प्रति किसी को श्रद्धा और टियर किसी की अश्रद्धा। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ साथ श्रद्धा भाजन के समीप लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। जब श्रद्धे के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि में आनंद का अनुभव होने लगे, जब उससे संबंध रखने वाले श्रद्धा के विषयों के अतिरिक्त बातों की ओर भी मन आकर्षित होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। जब श्रद्धे का उठना, बैठना, चलना, फिरना, हंसना, बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके भक्त हो गए। भक्ति के अवस्था प्राप्त होने पर हम अपने जीवन क्रम का थोड़ा या बहुत अंश उसे समर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं और उसके जीवन क्रम में भी अपना कुछ प्रभाव रखना चाहते हैं। कभी हम अर्पण करते हैं और कभी याचना करते हैं। सारांश यह कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भजन से विशेष घनिष्ठ संबंध रखते हैं, उसकी सत्ता में विशेष रूप से योग देना चाहते हैं। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे, समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी निंदा करने वालों से झगड़ा करेंगे या कभी कुछ उपहार लेकर उपस्थित होंगे, पर उसके प्रति हमारा अनन्य भक्ति हो जाएगी। वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है, वह अपने बहुत से अवसरों पर हमारा योगदान पा सकता है। भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत कुछ अंश स्वार्थ परिवार या शारीरिक सुकारी से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी की ओर लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मनिवेदन। महात्माओं के ऊपर श्रद्धा मात्र करके हम उन्हें जीवन भक्ति द्वारा उपार्जित कोई फल अर्पित कर सकते हैं, पर उनके भक्त होकर हम उन्हें अपने जीवन के ही कुछ अंश को अर्पित कर देते हैं। किसी वीरव्रती महात्मा पर बहुत श्रद्धालु होकर हम आर्थिक सहायता द्वारा उसके लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं, अपने वस्त्रों से उसे प्रसन्न और उत्साहित कर सकते हैं, पर उसके भक्त बनकर हम अपने शारीरिक बल द्वारा उसकी शारीरिक बल बनाएंगे, अपनी जानकारी और चतुराई को उसकी जानकारी और चतुराई बनाएंगे, अपनी वाग्मिता को उसकी वाग्मिता बनाएंगे, अपनी तत्परता को उसकी तत्परता बनाएंगे। यहाँ तक कि जो कुछ हमें होगा उसे हम उसका कर लेंगे और इस प्रकार उसके जीवन में अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व या प्रभाव को बढ़ाएंगे और उसके थोड़े बहुत हम भी भागी होंगे। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। यहाँ तक कि दूसरे की भक्ति करके हम तीसरे की भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। राम पर अन्य भक्ति करके हनुमान अन्य भक्तों की भक्ति के अधिकारी हुए। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी कांच छांट में लगा रहता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने और गद्दी भेंट करने वाले ही श्रद्धालु मिलते, दिन रात साथ साथ रहने वाले अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते तो अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे ही आकर्षण विधान में बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। भक्ति में किसी ऐसे सानिध्य की प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा हमारी महत्ता के अनुकूल गति का प्रसार और प्रतिकूल गति का संकोच होता है। इस प्रकार का सामीप्य लाभ करके हम अपने ऊपर पहरा बिठा लेते हैं, अपने को ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देते हैं जिसमें हमारे कर्मों का प्रतिबिंब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। जिसे अपनी वास्तविक शुद्धता का प्रज्ञान और रुचिकर होगा वह सापेक्षता के भय से ऐसे महत्वादर्श के समीप कभी नहीं चाहेगा, दूर दूर भागा फिरेगा। हम ही हम वाले तुम भी नहीं कह सकते, हम ही तुम की क्या बात है। ऐसे लोग तो स्वयं अपने लिए भक्त ढूंढते निकलते हैं। भक्ति के लिए दैन्य अर्थात दूसरों के महत्व के साथ अपने लघुत्व की भावना पहली बात है। इस भावना को जब हम मुक्त हृदय से मुक्त होकर धारण करेंगे और दूसरे पर श्रद्धा कर लेंगे तब हम उसके महत्व के सतत साक्षात्कार के लिए अनेक रूप में परिचय के लिए उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा में प्रेम का भी मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रियाकलाप को अपने पूज्य प्रेम पात्र के अधीन करके स्वयं महत्व के अभ्यास में प्रवृत्त होंगे। जनसाधारण के लिए इस प्रकार के आश्रय द्वारा महत्व की प्राप्ति सुगम होती है। जो उच्च पथ पर कष्टकर और श्रमसाध्य जान पड़ता है वही भक्ति के बल से मनोहर लगने लगता है। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चात्मिका बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। सील की विभूतियां अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला तब से वह इन अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों और आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। जब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है तब सात्विक सील की ओर आपसे आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्तिकारी क्षमता नहीं होती। सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसा किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उससे चतुर कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं, तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इनके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को प्रत्यक्ष करने वाले आश्रय और परिणाम है गुण नहीं, यही अनुभूति के विषय है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पठों के संदर्भ में जो आनंदानुभव करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पठिकों में था उनके चारों ओर पाई जाएंगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के साथ में है, या वे ही सतपथ के दीपक है। सात्वोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पठिकों के समीप लाभ की कामना करना स्वाभाविक ही है। समीप से अभिप्राय केवल किसी के साथ साथ लगा रहना नहीं है, श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि भी सामीप्य के ही विधान है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रयत्नों के सामीप्य की सिद्धि होती है। स्मरण द्वारा हम अपने आराध्य को, उसके कर्म क्षेत्र को अपने अंतःकरण के सामने उपस्थित करते हैं। यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जब हम इष्ट के कर्म क्षेत्र को सामने लाते हैं, तब उसमें ऐसे लोग भी तो आते हैं जिन पर हमारी कुछ भी भक्ति नहीं। हाँ, अवश्य आते हैं। इनके द्वारा हमारे इष्ट के स्वरूप का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है। इनके बीच उनका इष्ट का रंग और खुल पड़ता है। यदि राम हमारे काम के हैं तो रावण भी हमारे काम का है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का। जीवन में इस निवृत्ति और प्रवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता है। दुराचारी भी यदि अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप में भोग लेता है तो समाज के लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मर जाने पर रावण का जीवन भी सार्थक हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में अपनी आत्मा में ही भोग कर चला जाता है तो अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र संभावना को नष्ट कर देता है। इसी से बहुतों से प्रायश्चित के विधान में हुए पापों का सबके समक्ष कथन आवश्यक होता है। पाप का फल छिपाने वाला से अधिक अपराधी है। पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही, संसार में धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे मारे ही फिरते, संसार में अन्याय और अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाए न मिटती। जिस समाज में सुख और वैभव के रंग बिरंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े, उसमें रक्षा करने वाली आत्मा का अभाव अथवा विश्वात्मा की विशेष कला के अवसर की आवश्यकता समझनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार है तो उसका आंसू फल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोक रक्षा का कर्य है। अपने लिए किए जाने वाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर छोड़ना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो, पर यदि अन्यायी या अत्याचारी अपना हाथ नहीं खींचता तो लोक संग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य या कायरपन है जिस प्रकार अपने किए ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला ना देना कृतज्ञता है। अब भगवत भक्ति को लीजिए। ऊपर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य की भक्ति के आधार क्या क्या है। मनुष्य विश्व विधान का एक क्षुद्र चेतन अंश है। उसके धर्म, अधर्म, दया, निष्ठुरता आदि के भाव विश्व के उतने ही अंश से संबंध रखते हैं जितने के भीतर उसे कार्य करना है। वह कार्य और कुछ नहीं, अपनी समष्टि स्थिति और सुख संतोष का प्रयत्न मात्र है। अपने कार्य क्षेत्र के बाहर यदि वह अपने इन भावों का सामंजस्य ढूंढता है तो नहीं पाता है। कहीं उसे जीवो जीवस्य जीवनम का सिद्धांत चलता दिखाई पड़ता है, कहीं लाठी और भैंस का। वह सोचता है कि इन बातों का अनुष्ठान मनुष्य समाज में भी जानबूझकर क्यों न किया जाए। यह नहीं सोचता कि मनुष्य जाति की स्थिति इन अवस्थाओं से बहुत आगे बढ़ी है और चेतना की श्रेणी में उसके आगे की और कोई भूमि उसे दिखाई नहीं पड़ रही है। वह दया को निरर्थक समझ अपने अंतःकरण का एक अंग ही खंडित करना चाहता है। वह किसी को काना देखकर अपनी भी एक आंख फोड़ने चलता है। कुछ दिनों पहले समस्या मनुष्य जीवन को देवतुल्य बनाने की थी, अब मरकत तुल्य और मत्स्य तुल्य बनाने में समझी जाने लगी है। पर यह सभ्यता जड़त्व और नाश की ओर ले जाने वाली है। जब हृदय की कुछ उदात्त वृत्तियां बोझ मालूम होने लगी है तब और प्राणियों की अपेक्षा अपने अंतःकरण की पूर्णता का गर्व मनुष्य जाति कब तक कर सकती है। उसके मार्मिक अंग की व्यापकता के ह्रास और अष्टमता की वृद्धि के भयंकर परिणाम का आभास यूरोप दे रहा है। अंतःकरण की जितनी वृत्तियां हैं उनमें से कोई निरर्थक नहीं, सबका उपयोग है। इनमें से किसी की शक्ति फालतू नहीं। यदि मनुष्य इनमें से किसी को निष्क्रिय करने का अभ्यास करेगा या अभ्यास डालेगा तो अपनी पूर्णता को खोएगा और अपनी स्थिति को जोखिम में डालेगा। मिट्टी के ढेले, गुलाब के पौधे, कुत्ते और बिल्ली की अपेक्षा मनुष्य अपने में अंशी का अधिक अंश समझता है, उस सर्वात्मा का अधिक अंश समझता है, विश्व विधान जिसकी नित्य क्रिया है। अतः स्थिति रक्षा विधान की जो जो बातें अपने में है उसका अभाव उससे अंशी या सर्व में मानते नहीं बनता। दया, दाक्षिण्य, प्रेम, क्रोध आदि अपनी अंशात्मा में देखते हुए सर्वात्मा में उसके अभाव की धारणा मनुष्य करते कैसे करे। अतः ज्ञान क्षेत्र में ईश्वर की खोज हम उतने ही ढेरे में करेंगे जितने में इंद्रियों की सहायता लेकर बुद्धि पहुंचती है, और कर्म क्षेत्र में उसकी भावना हम उसे उतने ही भावों से परिमित करके करेंगे जितने की हमारे मन में जगह है। हम हैं, हम समझते हैं कि हम हैं और हम चाहते हैं कि हम रहें। ऐसी अवस्था में हम अपनी स्थिति रक्षा संबंधी भावों को परमावस्था तक पहुंचाकर उस परम भाव वै की भावना करेंगे। हम उसे धर्ममय, दयामय, प्रेममय मानेंगे और यह उसी का रूप होगा जिस रूप में उसका व्यवहार मनुष्य जाति में दिखाई पड़ता है, जिस रूप में मनुष्य जाति को उसकी आवश्यकता पड़ती है। अत्याचारी से पीड़ित होकर मनुष्य उसके कोप का आह्वान करता है, अपारग्रस्त होकर उसकी दया का भिखारी होता है, सुख से संपन्न होकर उसके धन्यवाद के लिए हाथ उठाता है, भक्ति से पूर्ण होकर उसके आश्रय की वांछा करता है। यही व्यवहार वह मनुष्यों के साथ भी करता है। अपने व्यवहार पथ में आश्रय प्राप्ति के निमित्त मनुष्य के लिए ईश्वर की समा स्वानुरूप भावना ही संभव है। स्वानुभूति द्वारा ही वह परमानुभूति की धारणा कर सकता है। भर्तृहरि ने स्वानुभूते कमानाय कहकर नमस्कार किया है। यदि चिन्मय में इतनी अधिक अनुभूति का भी निश्चय मनुष्य को न हो तो वह प्रार्थना आदि क्यों करने जाए? कुत्ते प्रार्थना क्यों नहीं करते? उनमें धर्म की प्रतिष्ठा नहीं है, अर्थात वे चेतना की उस भूमि तक नहीं पहुंचे हैं जिसमें समष्टि स्थिति की रक्षा से संबंध रखने वाले भावों का संचार होता है। वे यह नहीं जानते कि एक दूसरे को काटने दौड़ने से कुक्कुर समाज की उन्नति और वृद्धि नहीं हो सकती। समष्टि रक्षा या धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाले और दया आदि भाव उन्हें प्राप्त नहीं है। उनमें स्वार्थ का भाव है, परमार्थ का भाव नहीं। धर्मो रक्षति रक्षिता की धारणा उन्हें नहीं होती। जहाँ भाव है वही ईश्वर की भावना है। जिन प्राणियों में जिन भावों का विकास नहीं हुआ है उनमें उनकी चरितार्थ की आवश्यकता प्रकृति नहीं समझती है। भक्ति का स्थान मानव हृदय है, वही श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है। अतः मनुष्य की श्रद्धा के जो विषय ऊपर कहे जा चुके हैं उन्हीं को परमात्मा में अत्यंत विशद रूप में देखकर ही उसका मन खींचता है और वह उस विशद रूप विशिष्ट का सामीप्य चाहता है। उसके हृदय में जो सौंदर्य का भाव है, जो सील का भाव है, जो उदारता का भाव है, जो शक्ति का भाव है, उसे वह अत्यंत पूर्ण रूप से परमात्मा में देखता है और ऐसे पूर्व पुरुष की भावना से उसका हृदय गदगद हो जाता है और उसका धर्म पथ आनंद से जगमगा उठता है। धर्म क्षेत्र का व्यवहार पथ में वह अपने मतलब भरे ईश्वरता से प्रयोजन रखता है। रामकृष्ण आदि अवतारों में परमात्मा की विशेष कला ने एक हिंदू के हृदय की सारी शुभ और आनंदमयी वृत्तियाँ उसकी ओर दौड़ पड़ती है। उसके प्रेम श्रद्धा आदि को बड़ा भारी अवलंब मिल जाता है। उसके सारे जीवन में एक अपूर्ण माधुरी और बल का संचार हो जाता है। उनके सामीप्य का आनंद लेने के लिए कभी वह उनके अलौकिक रूप सौंदर्य की भावना करता है, कभी उनकी बाल लीला के चिंतन से विनोद प्राप्त करता है, कभी धर्म बलपूर्ण उनके निर्मल चरित्र का गान करता है, कभी सिर झुकाकर वंदना भी करता है, यहाँ तक कि जब जी में आता है प्रेम से बड़ा उलाहना भी देता है। यह हृदय द्वारा अर्थात आनंद अनुभव करते हुए धर्म में प्रवृत्त होने का सुगम मार्ग है। भक्ति हृदय से की जाती है। बुद्धि से भक्ति करना ऐसा ही है जैसे नाक से खाना और कान से सूंघना। हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन की 9 बातें ली गई है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कोड़ी श्रद्धा में याचकता का भाव नहीं है। जब प्रेम के साथ उसका संयोग होता है तभी इस भाव की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान अपने श्रद्धे पर अपने निमित्त किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालना चाहता, पर भक्त दाक्षिण्य चाहता है। रामलीला, कृष्ण लीला आदि सामीप्य सिद्धि के ही विधान है। इस सामीप्य की कामना भक्तवर रसखान ने बड़ी मार्मिकता से इस प्रकार प्रकट की है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो मिली नंद के ढेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो किए हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कुल कलिंद कदम्ब के दारण। रामलीला द्वारा लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्यदेव की आदर्श मानव लीला का माधुर्य देखते हैं। जिस समय दूर दूर के गांवों के लोग एक मैदान में आकर इकट्ठे होते तथा एक ओर जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखती है और दूसरी ओर तीरों से विधा रावण का विशाल शरीर जलता हुआ देखते हैं, उस समय वे धर्म के सौंदर्य पर लुब्ध और अधर्म की घोरता पर लुब्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार जब हम कृष्ण लीला में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्म रक्षा के अलौकिक बल का विकास देखते तब हमारी जीवन धारण की अभिलाषा दूनी चौगुनी हो जाती है। हिंदू जाति इन्हीं की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बीच अपना स्वतंत्र अस्तित्व बचाती चली आई है। इन्हीं की अद्भुत आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई है। राम और कृष्ण को बिना आंसू बहाए छोड़ना हिंदू जाति के लिए सहज नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर खड़े होकर उपदेश देने वाले नहीं थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंग को मनोहरता दिखलाने वाले थे। मंगल के अवसरों पर उनके गीत गाए जाते हैं और विवाहताओं की कुटिलता की, बड़ी बड़ों के आदर की, दुष्ट के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर की, वन की, संपदा की, विपद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया जाता है। संसार से तटस्थ रहकर शांति सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देने वालों का उतना अधिक महत्व हिंदू धर्म में नहीं है जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति की ज्योति जगाने वालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार ही माने गए हैं। अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुरी आ गया है कि हमारा हृदय आपसे आप उनकी ओर खिंचा पड़ता है। जो कुछ हम करते हैं, खेलना कूदना, हंसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, विनोद करना, उन सब में सौंदर्य लाते हुए जिन्हें हम देखेंगे उन्हीं की ओर ढल सकते हैं। वे हमें दूर का रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं, आप रास्ते में चलकर हमें अपने पीछे लगाने क्या खींचने वाले हैं। जो उनके स्वरूप पर मोहित न हो वह निसंदेह जड़ है। सुनि सीतापति सील सुमाओ, मोड न तन मोड न मन तन पुलक, नयन जल सो नर खे हर खाओ। जो उनका नाम सुनकर पुलकित होता है, जो उनके स्वरूप पर मोहित होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यत्व का सर्वथा त्याग न कर दे, उनके लिए शुद्ध सात्विक जीवन का यही मार्ग है। रोगों के संपूर्ण दमन की अपेक्षा रोगों का परिष्कार ज्यादा काम में आने वाली बात है। निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला काटने वालों से लिप्त होकर दूसरों की भलाई करने वाले लोक कल्याण के विचार से कहीं अच्छे। जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। छात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम कृष्ण क्षत्रिय है। छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, उसका संबंध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात शायद ही कोई और मिले। झूठे किताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म सौंदर्य की योजना छात्र जीवन में जितने रूप में संभव है उतने रूप में किसी जीवन में नहीं। शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख भोग के साथ पर दुख कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष योग और कहाँ घट सकते हैं। इसी से छात्र धर्म के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक मर्म स्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिकता वृत्तियों से उत्कर्ष पर ले जाने और शुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है। संसार में मनुष्य मात्र की समान वृत्ति कभी नहीं हो सकती। इस बात को भूलकर जो उपदेश दिए जाते हैं वे पाखंड के अंतर्गत आते हैं। वृत्तियों की भिन्नता के बीच जो मार्ग होगा उसमें शिष्टों का आदर, दीनों पर दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। वही सर्वांगपूर्ण लोकधर्म का मार्ग होगा। छात्र धर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब दिन बनी रहेगी। कोई व्यापार युग उसे नहीं हटा सकता। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक क्रूर पिशाच बालक हम उद्यत देख रहे हैं, समझना या तो व्यर्थ है अथवा उसका समय ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि हम उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुंचे। उस समय का हमारा क्रोध कितना सुंदर और अक्रोध कितना गर्हित होगा। समाप्त।